एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत सौ अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1936 की चर्चित फिल्म अछूत कन्या का गीत, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। अशोक कुमार और देविका रानी की आवाजें, जे एस कश्यप के बोल और सरस्वती देवी का संगीत। कैसे बॉम्बे टॉकीज की संगीतकार बनी सरस्वती देवी, कैसे बनी अशोक कुमार और देविका रानी की जोड़ी, किसने सिखाया देविका रानी को गाना और 8 महीने तक किस राग को सीखते हुए अशोक कुमार ने अपने आप को गाना गाने के लिए तैयार किया, क्या खास बातें हैं इस गीत की, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं श्वेता पांडे।
पंछी बन के संग संग डोलू रे।
1935-36 का समय काल यानी बोलती फिल्मों का शैशव काल। 1931 में आलम आरा से शुरू कर हमारी बोलती फिल्में 1935-36 तक आते आते एक 4-5 साल के बच्चे की तरह अपने नन्हे लड़खड़ाते कदमों को जमाने की कोशिश कर रही थी। कलकत्ते का न्यू थिएटर्स और बम्बई का बॉम्बे टॉकीज फिल्म निर्माण स्टूडियोज में सबसे चर्चित नाम थे। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना 1934 में हिमांशु राय और उनकी पत्नी देविका रानी ने की थी। 1934 से लेकर 1954 के अपने 20 साल के सफर में इस बैनर तले 40 फिल्मों का निर्माण हुआ था। 1935 में बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा प्रदर्शित हुई, जिसमें नजमुल हुसैन और देविका रानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। और उस समय बॉम्बे टॉकीज के स्थायी फिल्म निर्देशक हुआ करते थे फ्रांस ऑस्टेन और संगीतकार हुआ करती थी सरस्वती देवी। इस फिल्म के बाद इन्हीं कलाकारों के साथ दूसरी फिल्म जीवन नैया का निर्माण शुरू हुआ, पर निर्माण के दौरान नजमुल हुसैन और देविका रानी एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन दोनों फिल्म छोड़कर भाग गए। देविका रानी तो वापस आ गईं, पर हिमांशु राय ने नजमुल हुसैन को फिल्म से निकाल दिया। उस समय कुमुद मुलाल गांगुली बॉम्बे टॉकीज में बतौर लैब असिस्टेंट काम कर रहे थे। हिमांशु राय की नज़र उन पर पड़ी और इस तरह से जीवन नैया में नजमुल हुसैन की जगह आ गए कुमुद मुलाल गांगुली, यानी कि हमारे दादा मुनि अशोक कुमार, और बन गई अशोक कुमार और देविका रानी की फिल्मी जोड़ी। इस जोड़ी ने फिर आने वाले सालों में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। जीवन नैया 1936 में बनकर रिलीज हुई और इसी साल आई अशोक कुमार देविका रानी के अभिनय से सजी दो और फिल्में, जन्मभूमि और अछूत कन्या, जहां एक तरफ कलकत्ते में कुंदनलाल सहगल और कानन देवी के गाए गीतों की धूम मची थी, वहीं दूसरी तरफ बम्बई में अशोक कुमार देविका रानी की फिल्मों के गाने सर चढ़कर बोल रहे थे। और इस लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा योगदान जिनका था वो थी संगीतकार सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का जन्म एक पारसी व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था खुर्शी मेनोचा होमजी। बचपन से ही उनकी संगीत में रुचि थी। विष्णु नारायण भातखंडे से उन्होंने ध्रुपद और धमार की शिक्षा ली, फिर लखनऊ के मॉरिस कॉलेज में संगीत सीखा। 1933-34 के एक संगीत समारोह में भाग लेने वो लखनऊ गई थी, जहां उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज के प्रतिष्ठाता हिमांशु राय से हुई, जिन्होंने खुर्शी मेनोचा होमजी को बम्बई आकर उनकी फिल्मों में संगीत देने का न्योता दिया। पहले तो खुर्शी ने यह कहा कि उनका ज्ञान केवल शास्त्रीय संगीत में है, सुगम संगीत में नहीं। पर हिमांशु राय को कोई परेशानी ना होने की वजह से खुर्शी मेनोचा होमजी जुड़ गई बॉम्बे टॉकीज के साथ। आरंभ में खुर्शी मेनोचा होमजी को हिमांशु राय की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री देविका रानी को संगीत सिखाने का जिम्मा सौंपा गया। इसी दौरान वे हल्के फुल्के गाने भी बनाने लगी और इस तरह से बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा के गीतों का सृजन हुआ। पारसी समाज में खुर्शी मेनोचा होमजी के फिल्मों में आने से हंगामा मच गया। उनका घोर विरोध हुआ, पर खुर्शी अपनी राह से जरा भी नहीं डिगी। उन्होंने अपना नाम खुर्शी मेनोचा होमजी से बदलकर सरस्वती देवी रख लिया और एक के बाद एक सुपरहिट गीत रचती चली गई। फिल्म अछूत कन्या का यह गीत न केवल सरस्वती देवी के संगीतबद्ध किए हुए लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है, बल्कि फिल्म संगीत इतिहास के शुरुआती लोकप्रिय युगल गीतों में भी इस गीत का उल्लेख आदर के साथ किया जाता है। दोस्तों, 1935-36 का वह जमाना ऐसा था कि प्लेबैक सिंगिंग की नींव बस रखी गई थी, पर प्लेबैक टेक्निक उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। न्यू थिएटर्स की फिल्म धूप छांव में रायचंद बोराल और जवानी की हवा फिल्म में सरस्वती देवी ने सर्वप्रथम पार्श्व गायन की पद्धति लागू जरूर की, पर फिल्म अछूत कन्या के गाने अशोक कुमार, देविका रानी और सरस्वती देवी ने ही गाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उन दिनों अभिनेता अभिनेत्री को चाहे गाना आए या ना आए, अपने ऊपर फिल्माए गाने खुद ही गाने पड़ते थे। अपने इसी अनुभव को बड़े रोचक तरीके से दादा मुनि अशोक कुमार ने विविध भारती के 1969 में रिकॉर्ड किए हुए जयमाला कार्यक्रम में बताया था। उन्होंने कहा, मुझे शास्त्रीय संगीत आधारित गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। दरअसल जब मैं फिल्मों में आया था 1934-35 के आसपास, उस समय गायक अभिनेता सैगल का दौर था। उन्होंने फिल्मी गानों को एक शक्ल दी और मेरा ख्याल है कि उन्हीं की वजह से फिल्मी गानों को एक महत्वपूर्ण जगह मिली। आज उन्हीं की बुनियाद पर यहाँ की फिल्में बनाई जाती हैं, यानी कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए गानों को सबसे ऊंची जगह दी जाती है। मेरे वक्त में प्लेबैक की तकनीक की तैयारियां चल रही थी। तलत, रफी, मुकेश फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे। लता तो पैदा भी नहीं हुई होगी। अभिनेताओं को गाना पड़ता था, चाहे उनके गले में सुर हो या नहीं। इसलिए ज्यादातर गाने सीधे सीधे और सरल बंदिशों में बनाए जाते थे, ताकि हम जैसे गाने वाले आसानी से गा सके। आगे जब दादा मुनि से उस जमाने में उनके द्वारा गाए गीतों के बारे में पूछा गया, तो पता है उन्होंने किस गीत का जिक्र सबसे पहले किया? जी हाँ, फिल्म अछूत कन्या के इस गीत का। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। इस गीत के जरिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया कि उस जमाने में बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों के गीतों में रे शब्द का बहुत प्रयोग होता था। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे गीत की तरह और भी ऐसे गाने हैं जिनमें रे का प्रयोग हुआ है। कुछ नाम गिनाए, ये चल चल रे नौजवान, आओ संग चले हम, चली रे मेरी नाव चली रे, धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल ना मचा, पीर पीर क्या करता रे तेरी ते पीर न जाने कोई। दादा मुनि अशोक कुमार आगे बताते हैं कि फिल्मों में गीत गाने की तैयारी में वे 8 महीने राग यमन सीखते रहे। फिल्म अछूत कन्या के इस गीत की अवधि 2 मिनट और कुछ सेकेंड्स हैं। गीत में मुखड़ा और एक अंतरा है। मुखड़े की धुन को ऑर्केस्ट्रेशन में पिरोकर प्रील्यूड और इंटरल्यूड रखा गया है। गीत के फिल्मांकन में अशोक कुमार और देविका रानी आम के बगीचे में नजर आते हैं। दोनों जाकर एक झुकी हुई टहनी में बैठ जाते हैं और वहीं इस गीत के बहाने हल्की फुल्की नोकझोंक हो रही है। गीतकार जमुना स्वरूप कश्यप ने कितनी सुंदरता से दो दो अलंकारों का प्रयोग मुखड़े में किया है। बन के बन बन बोलू में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है, तो दूसरी तरफ बन शब्द का एक ही वाक्य में दो भिन्न अर्थों के लिए प्रयोग करते हुए यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। गीत में एक बन का अर्थ है वन या जंगल और दूसरी बार बन का अर्थ है बनना। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलू रे। गीत के फिल्मांकन को देखकर महसूस होता है कि उस पुराने दौर में कितनी शालीनता हुआ करती थी। नायक नायिका बिल्कुल अकेले में और एक दूसरे के पास बैठकर एक रोमांटिक गीत गा रहे हैं, पर कोई किसी को छू नहीं रहा। पूरे गीत में बस एक बार अशोक कुमार को देविका रानी का हाथ पकड़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वह भी इसलिए कि गीत में उस जगह पकड़ने की ही बात हो रही है। वो पंक्ति है,
तुम डाल डाल मैं पाक पाक बिन पकड़े कभी न छोड़ू संग संग को।
इस तरह से फिल्मांकन की मांग थी कि यहाँ अशोक कुमार देविका रानी का हाथ पकड़े। इस पंक्ति के पूरा होते ही अशोक कुमार उनका हाथ छोड़ देते हैं और पूरे गीत में इसके अलावा दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छूते। दोस्तों, गुजर गया वो ज़माना कैसा कैसा। उस ज़माने की फिल्मों और उन दिनों के गीतों को सुनते हैं तो एक अजीब सा रोमांच हो आता है। क्या कमाल का था वह ज़माना जब हमारी फिल्में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीख रहा था, है ना?
मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोल रे संग संग।
तो यहाँ आकर पूरी होती है गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आपको पसंद आई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है, वाचन स्वर श्वेता पांडे का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।